नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इंजन खराब होने के संदेह में इंडिगो की फ्लाइट की दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जेनजी के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यमन के हौसी विद्रोही गुट के इजराइल पर हमले मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया संघर्ष तेज हुआ। और आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने 40 एकड़ में फैले रख रखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा और फरीदाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और युवाओं के लिए अनेक नए अवसर लेकर आएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की प्रगति और विकास का प्रतीक बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर देश इस संकट से निपटने के प्रयास कर रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में इस हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता प्रति वर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी और पूर्ण विकास होने पर इसे प्रति वर्ष 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट की आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक इंजन में खराबी के संदेह में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 161 यात्री वाली ये फ्लाइट विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही थी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सुबह 10:39 हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट सुबह 10:54 पर सुरक्षित रूप से लैंड कराई गई और अब हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य है। इस बीच दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि आपातकालीन लैंडिंग की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल तुरंत मौके पर भेजे गए। उन्होंने कहा कि फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कराई गई और किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए जेनजी के विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार द्वारा पिछले साल जेनजी के विरोध प्रदर्शनों पर जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने के एक दिन बाद हुई है। सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली को काठमांडू से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूर्व गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक को भी भक्तपुर जिले के सूर्य विनायक नगर पालिका के कटुंजे स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। ओली और लेखक दोनों को पिछले साल सितंबर में जेनजी आंदोलन को दबाने में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई युवाओं सहित 76 लोग मारे गए थे। जेनजी आंदोलन से संबंधित घटना की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने ओली और लेखक सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नेपाल की नवगठित सरकार ने कल अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जांच आयोग के सिफारिशों को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया। केपी ओली को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद चिकित्सा परीक्षण के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम एशिया में वर्ष 2014 से यमन की राजधानी सनआ पर नियंत्रण रखने वाले हाउसी विद्रोहियों ने आज सुबह इसराइल पर पहली मिसाइल दागी। यमन के इस संघर्ष में प्रवेश करने से ये और तेज हो गया है। ये तनाव ईरान और हिजबुल्ला के बीच रात भर हुई भीषण गोलीबारी के बाद बढ़ा है। इस कारण बीरशेवा और इसराइल के प्राथमिक परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में 3 अलग अलग मौकों पर सायरन बजे। सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक संघर्ष विराम के कारण हौसी विद्रोहियों ने पहले प्रत्यक्ष हमले नहीं किए थे, परंतु अब हौसी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने ईरान को समर्थन देने की बात कही है। जवाबी हमलों में इसराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करके अर्थ आवर के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि अर्थ आवर के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम सभी मिलकर पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा बनाएं। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है। ये एक विश्वव्यापी अभियान है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और पर्यावरणीय स्थिरता की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:00 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। पश्चिम बंगाल में राम नवमी जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में 2 समुदायों के बीच 3 स्थानों पर हुई झड़पों के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इनमें एक धार्मिक संगठन के 2 नेता भी शामिल है। उपद्रवियों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। केंद्रीय बल इलाके में गश्त कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के DIG अजीत सिंह यादव भी क्षेत्र में मौजूद है। खबरों के मुताबिक रामनवमी जुलूस के दौरान मची गड़बड़ी रघुनाथगंज के फूलतला ट्रैफिक जंक्शन पर शुरू हुई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब आसपास के घरों और रघुनाथगंज पुल से जुलूस पर पत्थर फेंके गए। शीर्षतला गांव में भी हिंसा भड़की जब निवासियों ने तेज संगीत बजाते हुए धार्मिक स्थल से गुजर रहे जुलूस का विरोध किया। ग्रामीणों ने कथित तौर पर जुलूस पर हमला किया और पत्थर फेंके। झड़पों की खबर मिलते ही फैलते ही कुछ इलाकों में भारी भीड़ जमा हो गई। व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की बड़ी टुकड़ियां तैनात की गई। IPL क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से M चिन्नस्वामी स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 2 महीने तक चलने वाला ये टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। Under-23 ट्राई नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में आज भारत का मुकाबला भूटान से होगा। ये मैच गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में शाम 7:00 बजे खेला जाएगा। पश्चिम एशिया में मिसाइलों और ड्रोन से किए गए लगातार ताजा हमलों के कारण तनाव तेजी से बढ़ गया है। खाड़ी के कई हिस्सों में मिसाइलों को गिराया गया है और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा ने रात भर में आने वाले अधिकतर ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। वही खबरें बताती हैं कि यमन से एक मिसाइल दागने के कारण मध्य इसराइल में सायरन बजने लगे। लेबनान के अधिकारियों ने बेरूत और दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हमलों में हताहत होने वाले लोगों की सूचना दी है। वहीं हिजबुल्ला का उत्तरी इसराइल पर हमला जारी है। इस बीच कल ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले में सऊदी अरब के एक सैन्य अड्डे पर अमेरिका के लगभग 10 सैनिक घायल हो गए और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। 2 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।